ओम शांति। तो आप लोग जब से आए हो तो यहाँ का रूटीन तो सवेर से शुरू हो जाता है। 4:15 होती है ना पहली क्लास आपकी, तो कम से कम 4 बजे तो आपको आपके रूम से आना पड़ता है। तो आप लोग को इजी पड़ रहा है मुश्किल पड़ रहा है? इजी है। आपके घर में है तो आप ऐसे 4 बजे या 3:30 तो नहीं उठते होंगे, वहां कभी अगर बोला तो थोड़ा मुश्किल लगता है। तो आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि देखो, हमारे जीवन में अगर बहुत सारे काम होते हैं तो हम उस काम को पहले करेंगे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या उस काम में ज्यादा समय देंगे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे जीवन का करीब 1/3 पार्ट हम लोग एक एक्टिविटी में देते हैं, और वो क्या है? सोने में। तो जरूर ये हमारी लाइफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, नहीं तो हम सब अपने जीवन का, और कोई ऐसी एक्टिविटी है आप समझते हैं जो जिसमें आप इतना समय देते हो? कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें आप जीवन का इतना, इतने घंटे या इतना समय देते हो, कोई एक्टिविटी है ना? तो एक सिंगल एक्टिविटी जिसमें आप नियरली 1/3 ऑफ योर लाइफ दे रहे हो, और उसके बारे में सरप्राइजिंगली हम लोगों को बहुत कम मालूम है। और क्यों कम मालूम है? क्योंकि उसको समझने के लिए कैसे समझेंगे? तो आज हम लोग सब चीज साइंस के आधार पर समझते हैं, लेकिन नींद एक ऐसा विषय है जिसका फिजिकल बॉडी से भी कनेक्शन है तो माइंड से भी कनेक्शन है। अभी आप पिछले 2 दिन में आपने इतना तो समझा होगा कि माइंड बॉडी का पार्ट नहीं है। माइंड किसका पार्ट है? आपको बताया ना, शरीर और शरीर में रहने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा, आत्मा की शक्तियां हैं मन, बुद्धि और संस्कार। और क्योंकि आत्मा फिजिकल नहीं है, नॉन फिजिकल, हम मेटाफिजिकल बोलते हैं, तो साइंस के द्वारा उसको हम मेजर नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते उसको, क्योंकि साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स तो फिजिकल चीजों को माप सकते हैं ना। तो इसीलिए वो एक एस्पेक्ट तो क्लियर कर सकते हैं, हमारे बहुत सारे डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट वो एक एस्पेक्ट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उसका जो दूसरा एस्पेक्ट है वो नहीं क्लियर कर सकते। तो ये विषय वही समझ सकता है जो जिसके पास दोनों का थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, साइंस की भी अंडरस्टैंडिंग और अध्यात्म की भी अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए आज ये विषय हम इधर यहां ले रहे हैं, क्योंकि यहां आपको उसका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। दूसरा, स्लीप का जो हमारे जीवन में जिस तरह से स्लीप का पैटर्न होता है, विशेष फोर्सेस में थोड़ा वो इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग की ड्यूटी शिफ्ट सिस्टम में होती है, तो एक नॉर्मल व्यक्ति शायद दुनिया में उसकी जो एक लाइफस्टाइल है, रात को सोता है, सवेरे उठता है, 6-7-8 घंटे जो भी है वो सोता है, वो शायद हम लोगों को नहीं मिलती, कईयों को नहीं मिलती। कईयों के जॉब ऐसे होते हैं, पहले हमारे पास BSF के बहुत आते थे, उनकी सबसे बड़ी कंप्लेन होती थी कि हम ना, हमको तो 4 घंटा ड्यूटी, फिर 4 घंटा ऑफ, 4 घंटा इस तरह से करते रहते, तो हमको कभी भी नींद नहीं मिलती। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को समझेंगे तो हम समझेंगे कि किस तरह से हम ना ये एक एक्टिविटी, इसको कैसे हम सही तरीके से यूज करें। स्लीप को भी हम एक, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक ऐसी चीज है जिससे हमको बहुत प्राप्ति होती है, तो हमको ये प्राप्ति हो। तो ये विषय तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें बस एक ही ड्रॉबैक, और ड्रॉबैक क्या है? जैसे बचपन में बच्चे को सुलाना होता तो क्या बोलते हैं? सो जा बेटे, सो जा बेटे, सो जा बेटे। तो यहां भी मैं नींद 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 बोलूंगा तो क्या होगा? तो आप लोग सो जाएंगे। तो ये एक चैलेंज है कि भाई आप उस भाव में सो नहीं जाओ, क्योंकि सब्जेक्ट वैसा है, थोड़ा बार बार हम स्लीप स्लीप बोल रहे हैं। तो अगर मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछूं कि हमें एक दिन में 24 घंटे में कितना सोना चाहिए? 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा? किसी और को क्या लगता है कितना सोना चाहिए? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं ये पूछूं कि आप लोग कितना सो पाते हैं एक दिन में, तो कई सारे आंसर आएंगे। हो सकता है कोई 5 घंटा बोले, कोई 6 बोले, कोई 7 बोले, है ना? ऐसे ही होगा आंसर्स। तो इस सेशन के बाद आप समझेंगे कि ये आपके सारे आंसर गलत है। अगर कोई भी कहता है कि मैं 5 घंटा सोता हूं, 6 घंटा सोता हूं, 7 घंटा सोता हूं या 8 घंटा सोता हूं, ये सारे आंसर्स गलत है। कैसे ये गलत है? ये हम आगे देखेंगे। तो हम कितना सोते, हमें कितना सोना चाहिए, उससे पहले मैंने ऐसी रैंडमली, प्रकृति में भी बहुत सारे जानवर होते हैं, पशु पक्षी, वो लोग भी सोते हैं, तो वो लोग कितना सो रहे हैं, रैंडमली कुछ जानवरों को लिया, तो आपका शेर या टाइगर कितना सो रहा है, करीब 16 घंटे। और लैंड पे जो सबसे बड़े एनिमल है, जो एलिफेंट जिराफ, एलिफेंट कितना सो रहा है, 3 घंटे के आसपास। जिराफ कितना सो रहा है, 2 घंटे। तो आपको क्या लगता है, जो सबसे बड़े बड़े जानवर है वो भी इतना कम क्यों सो रहे, क्या कारण हो सकता, हाँ गुड हैबिट, फूड हैबिट्स, फूड हैबिट्स। तो अगर समझो वो वेजिटेरियन फूड खाता, तो बहुत सारे हिरन ये वो कई सारे जानवर है, वो भी तो वेजिटेरियन खाते हैं। तो ये क्वेश्चन को हम पेंडिंग रखेंगे, पहले हम मनुष्य का समझेंगे, फिर हम इसके ऊपर एक इन्फॉर्म्ड गेस कर सकते हैं कि क्या रीजन हो सकता। तो आप देखते हैं कि एक चट्टान है और एक चट्टान के ऊपर एक एक बूंद पानी गिर रहा, चट्टान को कुछ होगा, चट्टान कितना मजबूत होता और एक एक बूंद पानी, पानी में तो क्या कितनी शक्ति होगी, कुछ होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर लगातार बहुत समय तक गिरता रहा तो आप पानी के किनारे जितने बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं वो टूटे होते हैं, तो वो पानी के भाव से ही टूटते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक। तो आपके सामने मैंने ये चित्र इसलिए रखा कि नींद हमारे हर दिन की जरूरत है, अगर किसी कारण से वो नींद की कमी है या उससे जो बेनिफिट है उसकी कमी है तो आपको तुरंत नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन वो धीरे धीरे इकट्ठा होता है और एक दिन एक बड़ी व्याधि के रूप में अचानक हमारे सामने आता है। जैसे कई बार बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा था, फिट था, जिम जाता था, भागता दौड़ता 35 ईयर्स, अचानक हार्ट अटैक हो गया और खत्म। तो वो अचानक नहीं हुआ, ऐसी कई सारी चीजें बिल्डअप होती है और उसमें ये नींद की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हर दिन की रिक्वायरमेंट है और हर दिन की कमी आपको तुरंत नहीं मालूम पड़ेगी, लेकिन वो एक्यूमुलेट होती है और एक समय वो एक बड़े रूप में हमारे सामने आती है। तो आज हमारे सामने हर एक की एक जीवन में लक्ष्य रहता है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, रहता है सबका स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसका आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, यानी आपका अच्छा स्वास्थ्य है तो उसका सुख, या अगर आपका स्वास्थ्य किसी कारण खराब है, कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका परेशानी आपको ही झेलनी पड़ेगी, दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। पैसा कम ज्यादा हो आप शेयर कर सकते हो, कई और चीजें शेयर कर सकते हो, लेकिन अगर मेरा हेल्थ डाउन है तो उसका मुझे ही झेलना पड़ेगा। तो हर एक कोशिश करता है कि हमारी हेल्थ अच्छी हो, और अच्छी हेल्थ के 3 पिलर्स है। पहला है फिजिकल फिटनेस, हम लोग सब कुछ कुछ ना कुछ करते हैं, फोर्सेस में तो बहुत इसके ऊपर जोर है ही, बाकी भी आजकल दुनिया में ये समझते हैं फिजिकल फिटनेस तो बहुत जरूरी है, मॉर्निंग में आप देखेंगे पार्क्स में लोग वॉक करते हैं। दूसरा है गुड न्यूट्रिशन, अच्छा भोजन, आजकल इसके ऊपर बहुत अटेंशन है, अटेंशन है, आप में से क्या अटेंशन रखते, कोई भी बता सकता है आप इसके इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर क्या अटेंशन रखते हो, जंक फूड नहीं खाते, कई होते ज्यादा चीनी का नहीं खाएंगे, कई अटेंशन रखते बहुत तला हुआ नहीं खाएंगे, आजकल बहुत ये जागरूकता तो है कि हम, क्योंकि जानते हैं कि ये हेल्दी फूड नहीं है और ये हमको इफेक्ट करता। तो पहली दो चीज के लिए हम लोग कॉन्शियसली एफर्ट डालते हैं, आपके पूरे दिन में आप अटेंशन, आपको मैं खूब मिठाई मीठा पूरा दिन खिलाऊं तो आप मना करेंगे ना, बोले नहीं नहीं बस खा लिया, आप थोड़ा आप इतना नहीं खा सकते। तीसरा है हेल्दी स्लीप, अब आप में से मुझे कोई भी बताए कि आप रोज कुछ भी करते हो तो आप कॉन्शियसली ऐसी क्या चीज करते हो कि आप समझते हो कि रात को जब हम जाएं तो मैं सो तो मुझे अच्छी नींद आए, तुरंत नींद आए और एक अच्छी नींद आए, गहरी नींद आए, इसके लिए मैं पूरे दिन में कोई ऐसी एक्टिविटी करता हूं कॉन्शियसली। अगर कोई करता है तो क्या एक्टिविटी करता है, कोई भी बता सकता, रात को मैं जब सोने जाऊं तो मुझे एक अच्छी नींद आए, उसके लिए मैं दिन में कुछ कॉन्शियसली एफर्ट डालूं। भोजन के लिए मैं कॉन्शियसली एफर्ट डालता हूं, बहुत ज्यादा नहीं खाऊं, तला हुआ नहीं खाऊं, ये नहीं करूं, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देता हूँ, थोड़ा बहुत मेरा फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, कुछ वॉक होना चाहिए, कुछ जॉग होना चाहिए। अच्छी नींद के लिए मैं क्या कर दूं? हाँ जी, अच्छे से सोना, लेकिन उसके लिए क्या करोगे? समय से सोना, ओके गुड, ये भी चलो वो एक, कम से कम आप समय के, जिस समय सोना है उस समय के तो डालते हो, लेकिन उस समय पर आपको अच्छी नींद आए उसके लिए क्या कर रहे हो? हाँ जी, फ्रेश होते हैं, नहा के सोते हैं, बहुत थोड़े लोग करते हैं, मैं नहीं समझता हूँ सब लोग नहा के सोते हैं, जनरली लोग मॉर्निंग में नहाते हैं मेजोरिटी, कोई होते तो शाम को ऑफिस आए तो नहाते। और कोई कुछ ऐसा करता करते हैं साइड में? अच्छा पक्का? अच्छा कितने लोग साइड में करते हैं, मतलब साइड में करते हैं जब एकदम ही सो रहे तब तो साइड करना ही पड़ेगा, लेकिन लास्ट मिनट तक देखते देखते फिर साइड में करना हो, कोई साइड में नहीं हो ना, कुछ देर पहले करना होता है ना। तो आप देखेंगे कॉन्शियसली हम इस एक चीज के ऊपर अटेंशन नहीं देते और ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जब इसका, और क्यों नहीं देते? क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते ना, सोचते रोज कुछ काम किया रात को सोना ना उसमें क्या, लेकिन ऐसा नहीं। आज ये एक चीज है जो हमको पूरे दिन के लिए, अगले दिन के लिए पूरी शक्ति देती है, एनर्जी देती है। कोई व्यक्ति रात को नहीं सोया अगले दिन क्या हाल होता? और ये एक एक्टिविटी में आज बहुत हमारे सामने चुनौतियां हैं, क्योंकि ये कई ऐसे कारण है, टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल बोला, ये सब चीजें का सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे इस स्लीप के ऊपर हो रहा, उसकी क्वांटिटी के ऊपर, उसकी क्वालिटी के ऊपर, और उसका प्रभाव कई तरह से हमारे ऊपर आ रहा है जिसको हम नहीं रियलाइज करते। और ये पिछले 20-30 वर्षों की ही ना, मोबाइल सब कब से है, मीडिया और ये सब 90s से चालू हुआ, इतना सारा टीवी चैनल्स मोबाइल्स ये सब अभी 25-30 वर्ष की बात है। तो ये पहले से हम कंपेयर नहीं करते, पहले भी तो होता था, आज समय बदल गया और ये सब चीज हमको बहुत डीपली इफेक्ट कर रहा और बहुत सारे लोग रियलाइज नहीं कर रहे। अब मैं एक छोटे प्रॉब्लम से इस प्रॉब्लम को समझाता हूं, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। आप में से सब लोगों ने, जिसने भी मैथ्स पढ़ा है बचपन में, और वो भी सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड पढ़ा है, वो भी बड़े आराम से इसको कर सकता है। तो आप सामने देख रहे हैं फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन, फोर्थ लाइन में क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो नॉर्मल प्लस माइनस है, आप ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके बता सकते हो कि उधर क्या आंसर होगा। सिंपल है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। सबको चित्र तो दिख रहा है ना, क्लियर? सेवेंटीन, ओके। और कोई क्या समझते है? 19, 12, 14, 27, 20, 22, 20, 28, 19, 27, 126, 17, कितना? 20, कितना बोल रहे हैं आप? 3, 10, ओके, 19, 27, 11, 24। अच्छा आंसर तो एक ही होगा, दो आंसर होंगे? अच्छा अभी तक तो बहुत सारे आंसर हो गए, सारे 1 to 100 सुना देंगे, कोई ना कहीं तो राइट आंसर आ ही जाएगा। 21, चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं, है ना। बाकी इसका क्वालिफिकेशन क्या था? बचपन में मैथ्स पढ़ा होना चाहिए, सेकंड थर्ड क्लास, बस उतना तो सब क्वालिफाइड है। अच्छा चलो फर्स्ट लाइन देखो, फर्स्ट लाइन में आपको क्या दिख रहा है? तीन तीन तलवार के तीन सेट दिख रहे हैं, तो एक तलवार की कितनी वैल्यू होगी? तीन तलवार की तीन है, तो एक तलवार की कितनी होगी? कितनी होगी? एक होगी। चलो तो फिर एक है, तो ये एक गन की कितनी वैल्यू होगी? पांच, ओके पांच। तो ये एक स्कल की कितनी वैल्यू होगी? एक स्कल की दो, ओके। तो लास्ट में क्या है, 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। अगर प्लस और मल्टीप्लाई दोनों होता है तो पहले हम क्या करते हैं, उसका क्या, उसका रूल को क्या बोलते हैं, बॉड मास। तो 5 इंटू 4 कितना हुआ, 20 प्लस 2 कितना हुआ, अच्छा 22 किसने बताया, इधर से किसी ने बताया था, मैंने एक सुना फिर पीछे एक और किसी ने शायद बोला। हाँ तो अभी हमारे यहाँ कितने 100 से ऊपर तो है, 125 150 लोग, तो क्यों बस एक या दो ने राइट बताया। आपको इनफ टाइम दिया, बताया भी बहुत सिंपल है, आप लोग को थोड़ा अटेंशन देना था, उसके बावजूद इतनी अपॉर्चुनिटी देने के बाद कोई चीज मुश्किल थी इसमें, क्या मुश्किल था, सबने पढ़ा है ना बचपन में मैथ्स। ये बॉर्ड मास इसलिए बोला कि हमारे टाइम में तो थर्ड क्लास में ऐसा कुछ पढ़ाते थे, अभी पता नहीं कब पढ़ाते। अच्छा तो क्यों हुआ ऐसा, तो इस सबसे पहला प्रॉब्लम है बीइंग इन प्रेजेंट। ये सब मैंने जो बोले ना, आजकल जितनी सारी टेक्नोलॉजी और सब चीज का, इसका सबसे बड़ा प्रभाव हुआ कि आज हमारा माइंड बहुत फास्ट चलता है, माइंड को एकाग्र नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजों में उलझा रहता ना, सवेरे उठे ही व्हाट्सएप ये वो, तो माइंड हर समय बिजी हो गया, हर एक से हुआ। मैंने ये एक्सरसाइज क्यों दी, ये हर एक अफेक्टेड है, कोई सोचा नहीं मैं तो ठीक हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। हम सब समाज में रहते हैं, यहां कोई है जो मोबाइल यूज नहीं करता, एक भी ऐसा जो मोबाइल यूज नहीं करता। तो ये टेक्नोलॉजी हर एक के जीवन के साथ जुड़ी हुई है, और जुड़ी है क्योंकि उसके बहुत फायदे हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत है। तो आज सबसे बड़ी चीज है कि माइंड फास्ट होने के कारण एकाग्रता नहीं, बीइंग इन प्रेजेंट, वर्तमान में नहीं रह सकते। अभी वहां भी आप एक लाइन देख रहे थे, एक लाइन पूरी नहीं देखी, माइंड दूसरे लाइन में जंप कर रहा है, दूसरा लाइन भी पूरा नहीं देखा, तीसरे वहां तीन तलवार थी, लास्ट में चार तलवार थी फटाक से। और दूसरा प्रॉब्लम है क्योंकि माइंड फास्ट था तो हम बहुत फास्ट कोई कंक्लूजन पे जंप करते हैं, फटाफट तीन तलवार है, लास्ट में भी प्लस माइनस, लास्ट में शायद मल्टीप्लाई था, कईयों ने आपने क्या कर दिया होगा, लेकिन अगर चित्र देखेंगे चित्र में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो माइंड फास्ट हो गया सबका। तो ये प्रॉब्लम है या नहीं है, है सबके साथ है, और ये पिछले 25-30 वर्षों के कारण बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है इसका ना। और हमारे माइंड की शक्ति का कनेक्शन बहुत सिंपल है, जितना माइंड फास्ट चलता है उतनी एनर्जी आपकी बहुत फास्ट ड्रेन होती है, और जितना माइंड स्लो है उतनी आपकी एनर्जी कंजर्व होती है। तो आप, हम सब अपने आप चेक कर सकते हैं, देखो कैसे हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी शक्ति मन की शक्ति, कितनी तीव्रता से हम उसका खर्चा कर रहे हैं। तो अब इसके ऊपर कैसे हम पॉज लगाएं और कैसे इसको रीजेनरेट करें। हाँ तो एक घर के सामने से जा रहा था, तो घर के बाहर मकान के मालिक ने ना एक छोटा सा नोटिस लगाया था बेल के नीचे, क्या लिखा है, कृपया घंटी मारने के बाद प्रतीक्षा करें, उड़कर नहीं। क्यों लिखा उसने ये, क्योंकि थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं, हर चीज में फास्ट फास्ट है ना। अब नींद से देखो, कईयों को नींद की परेशानी, कई कारणों से नींद नहीं आती, क्या क्या कारण होते हैं, सिंपल जो है ना डे टू डे लाइफ में कई होते हैं, जैसे उनको तकिया थोड़ा मोटा चाहिए, तकिया पतला सा होगा तो उनको नींद नहीं आएगी, तकिया चाहिए जरूर और तकिया मोटा भी चाहिए। कई होंगे जिनको अपने घर में तो नींद आई है, कहीं और चले गए तो किसी दिन मेहमान आ गए, बोला नहीं आज बेडरूम नहीं, आज जाओ उधर डाइनिंग में, उधर सो जाओ, नीचे सो जाओ, या बोले उधर सोफे पे सो जाओ, तो नींद आएगी नहीं आज। तो कईयों को ऐसे इफेक्ट होता है, तो इन लोगों को देखना, इन लोगों के सामने भी वही चैलेंज है, तो इनको नींद आ रही है या नहीं आ रही, इसके पास तकिया नहीं है, इसके पास बेड नहीं है, ऐसा नींद आ रही है। आपको क्या लगता है, सोया हुआ है या नहीं सोया हुआ है, इसके इसको बेडरूम नहीं है, तो आपको क्या लगता है, सोए हुए या गहरी नींद में सोए हुए। कई होते हैं थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो नींद नहीं आएगी। तो ये सब लोगों के सामने इतनी सारी चुनौतियां, लेकिन इनको बड़ी अच्छी और गहरी नींद आ रही, तो ऐसा क्यों हो रहा, हाँ टेंशन नहीं है। तो एक बात तो अच्छी है कि हम सब भी बचपन से ही बड़े हुए ना, छोटे से बड़े हुए, तो कहीं हमारे पास भी ये आर्ट ऑफ स्लीपिंग था, लेकिन समय के साथ हमने उसको खो दिया। तो कोई चीज अगर हमारे पास थी तो शायद थोड़ा एफर्ट डालें तो वापस आ सकती है। अब क्योंकि हम नींद के विषय में बात करें तो नींद से रिलेटेड मैं दो एक्सपीरियंस शेयर करता हूं जो हम सब ने कभी ना कभी अनुभव किया। एक एक्सपीरियंस है कि कभी कभी क्या होता है कि आप सोते हो और अचानक आपका सवेरे आंख खुल जाती है, आंख खुलती है आप देखते हैं टाइम में से 2:30 बजे, जब आंख खुली एकदम फ्रेश, लेकिन फिर टाइम देखा 2:30 बजे, अभी क्या करें, सो जाते हैं। होता है ऐसा कभी कभी अचानक आंख खुली एकदम फ्रेश, लेकिन फिर टाइम देखते हैं अच्छा अभी इतना जल्दी अभी क्या करेंगे, तो सो जाते। अच्छा एक दूसरा एग्जांपल, कभी कभी एक नॉर्मल रूटीन है लेकिन किसी दिन आपकी छुट्टी हो गई है? तो आप जितना रोज सोते थे उससे ज्यादा सो रहे हो। अक्सर करके बच्चों में ये होता है, रोज उनको स्कूल जाना होता है तो माँ उनको टाइम पर उठाएगी, जिस दिन छुट्टी होगी तो उस दिन बच्चे क्या करेंगे, उस दिन माँ उसको कई बार बुलाएगी, तब जाके 1-2.5 घंटे उसके बाद जाके उठेंगे। तो आज वो ज्यादा सोए तो उनके पास ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, ज्यादा चुस्ती में होना चाहिए, लेकिन आप क्या देखते हैं कि जिस दिन छुट्टी हुई बच्चा ज्यादा सोया पूरा दिन वो चुस्ती में रहता है, सुस्ती में रहता है। तो ज्यादा सोने से कोई ज्यादा हमें एनर्जी मिले या ज्यादा रिफ्रेश हो ऐसा नहीं होता। एक फिक्स्ड पीरियड टाइम के बाद सोने से हमको एनर्जी मिलती नहीं है, हमारी एनर्जी खर्च होने चालू होती, इसलिए जरूरी हमें फिक्स पीरियड मालूम हो। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि मुझे कम सोने को मिलता है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, कई सारे काम है, नींद के लिए टाइम नहीं मिलता, तो कम के लिए भी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ज्यादा सोएंगे तो भी प्रॉब्लम, तो कम भी प्रॉब्लम है ज्यादा भी प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं आपको ऑप्टिमम टाइम तो मालूम होना चाहिए ना, व्यक्ति को सोना कितना चाहिए, तो हम तो तब तो हम डिसाइड करेंगे। अच्छा अब आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे, कोई छोटा बच्चा भी अगर आपसे पूछे कि नींद क्या होती है तो आप क्या बताएंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे नींद क्या होती है, सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे भाई नींद क्या होती है? अगर मैं सिर्फ आंख बंद कर लूं तो क्या उसको बोलूंगा कि नींद आ गई? तो छोटे बच्चे को कैसे समझाएंगे नींद क्या होती है? चलो मैं इसको एक सिंपल रूप से एक एग्जांपल के रूप से बताता हूं कि जब हम सोते हैं तो जनरली हमको बाहर का कुछ मालूम नहीं होता है ना, चोर कब चोरी करता रात को, क्योंकि उसको पता है कि अभी इन लोगों का कॉन्शियसनेस नहीं है, सोए हुए। एक दूसरा केस है जहां एक पेशेंट का ऑपरेशन होना है तो डॉक्टर उसको इंजेक्शन देके अनकॉन्शियस करता, उसको भी बाहर का कुछ नहीं मालूम। अब क्या मैं ऐसा कहूंगा कि एक व्यक्ति जो सो रहा है और एक व्यक्ति जिसको डॉक्टर ने बेहोश किया, दोनों स्टेट सेम है या डिफरेंट है? क्या डिफरेंस लगता है आपको? अच्छा बहन जी ने बताया कि एक जो सो रहा है वो व्यक्ति है वो जाग सकता है ना, थोड़ा उसको डिस्टर्ब करेंगे तो जाग जाएगा, लेकिन जिसको बेहोश किया है उसको कितना भी हिलाओगे जब तक उसका वो इफेक्ट नहीं खत्म होगा तब तक वो, नहीं तो उसका ऑपरेशन कैसे करोगे, तो इसीलिए उतना टाइम तक कुछ भी कर लो वो जागेगा नहीं। ये एक डिफरेंस है। और कोई डिफरेंस है? एक व्यक्ति सो रहा है और एक व्यक्ति ऐसे अनकॉन्शियस किया हुआ। हाँ, एक नेचुरल तरीका एक आर्टिफिशियल तरीका, चलो तरीका दोनों अलग है, एक नेचुरल तरीके से सोया एक आर्टिफिशियल तरीके से वहां पहुंचा, लेकिन उसके बाद क्या वो दोनों की स्थिति सेम है? क्या करता है वो? रिकवर करता। ओके और ओके नहीं होता। ओके और आप बता रहे तो मैं इसको एक सिंपल तरीके से बताता हूं कि जब व्यक्ति सोता है तो उसको सपने आते हैं, और जब व्यक्ति को ऐसे बेहोश किया होता है तो उसको सपने आएंगे। तो कहने का भाव है जब व्यक्ति सोता है तो उसको बाहर का भले नहीं मालूम लेकिन उसके अंदर माइंड चल रहा होता है, जो आप बोल रहे हो ना कुछ सोच रहा है, पूरे दिन की एक्टिविटीज रिकलेक्ट कर रहा है, लेकिन जब व्यक्ति को बेहोश किया तो बाहर से भी शांति अंदर भी शांति। तो नींद क्या है उसको समझने का तरीका ये है कि जब व्यक्ति सो रहा है तब उसका माइंड जो अंदर से चल रहा है वो किन किन स्टेजेस में चेंज हो रहा, वो जब हम समझते हैं तो हम नींद के बारे में सही रीति से समझते हैं कि नींद वास्तव में क्या होती। तो स्लीप कैन बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस फ्रॉम विच ए पर्सन कैन बी अराउज्ड, यानी वो एक तरह की बेहोशी स्थिति है लेकिन उसको अगर जगाएंगे तो वो जाग जाएगा, है ना। एक व्यक्ति जब सो रहा है तो अगर थोड़ी सी आवाज हुई तो हो सकता है वो नहीं जागे, लेकिन ज्यादा आवाज होगी तो जाग जाएगा। थोड़ा सा समझो स्मेल का चेंज हुआ नहीं पता चलेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हुआ नहीं पता चलेगा, लेकिन ज्यादा होगा तो, थोड़ा सा आपने हिलाया तो शायद नहीं पता चले, ज्यादा हिलाओगे तो। तो पार्शियल डिटैचमेंट फ्रॉम सेंसेस, है ना, तो इसको दूसरी भाषा में पार्शियल डिटैचमेंट और विड्रॉल फ्रॉम सेंसेस, यानी नींद के समय हम अपनी कर्मेंद्रियों से डिटैच होते हैं। और पार्शियल इसलिए बोला कि पूरी तरह से नहीं, अगर किसी ने ज्यादा हिलाया, कोई ज्यादा चेंज है, ज्यादा आवाज है, ज्यादा लाइट है तो व्यक्ति जाग जाएगा। लेकिन मैंने एक शब्द के ऊपर अंडरलाइन किया, पार्शियल डिटैचमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। नींद से जो भी प्राप्ति होती है आपको, प्राप्ति तो होती है ना, इसलिए हम लोग सोते हैं, उसका फाउंडेशन है कि कुछ समय के लिए आपको कर्मेंद्रियों से डिटैच होना है। अगर कोई कारण से आप कर्मेंद्रियों से डिटैच नहीं होते, आप कितने भी घंटे सो लो आपको कोई फायदा नहीं होगा। जैसे अभी आपको वापस जाना है, रिजर्वेशन नहीं है, आप रात को बस में गए, रिजर्वेशन नहीं था, बस में बैठे, बस आप जानते हो ना कितने झटके लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आप सोने की कोशिश कर रहे हो फिर वापस जाग जाते हो, सोने की कोशिश कर रहे हो फिर जाग जाते हो, क्योंकि ये कर्मेंद्रियों से डिटैच नहीं हो पा रहे। पूरा 10 घंटे की जर्नी हो गई, आप फिर भी आंख बंद करके बैठे हुए हो, घर में जाओगे सबसे पहले क्या करोगे, क्या करोगे, टाइम होगा तो सबसे पहले सोओगे। क्यों? क्योंकि वो 10 घंटे सोए लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं हुआ। तो आपको कर्म इंद्रियों से डिटैच होना। इस पॉइंट को मैंने क्यों अंडरलाइन किया, क्योंकि ये जो डिटैचमेंट शब्द है ये आध्यात्मिकता में इसका बहुत महत्व है। पूरा मेडिटेशन इस बात के ऊपर टिका हुआ है, जो आपको राजयोग का मेडिटेशन सिखाते हैं ना, वो इस बात पे। तो हमारे यहां जो पूरा ज्ञान का सोर्स है, तो आप सबने देखा है मॉर्निंग को इसी हॉल में एक क्लास होती है, हम लोग उसको मुरली क्लास बोलते हैं, और पूरा जितना भी स्पिरिचुअल नॉलेज है, यहां जितने भी स्पीकर आते हैं ना, वो सब का जो सोर्स है वो वहां से है। सब अपनी रीति से थोड़ा उसको अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज ये, इसको हम लोग बोलते हैं मुरली या ज्ञान मुरली या परमात्मा के वर्षन है। तो उसमें एक वर्षन बड़ा अच्छा आया था कि यहां का सोना क्या है, सोना अर्थात कर्म से डिटैच हो जाना। तो आप कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाओ, अशरीरी बनो अर्थात सो जाओ। तो देखो मेडिटेशन में, मेडिटेशन से हमको प्राप्ति होती है, उसको समझने का तरीका ये है। नींद से रोज प्राप्ति हो रही है, क्यों? क्योंकि आप डिटैच हो रहे हो। मेडिटेशन में जिसने जितनी एबिलिटी एक्वायर की कि थोड़ी देर में मैं अपने कर्मेंद्रियों से डिटैच हूं, तो मैं अपने आप को रिचार्ज कर सकता हूं, रीएनर्जाइज कर सकता हूं। इसलिए आपको कई बार बताया कि बीच बीच में हमको थोड़ा सा टाइम निकाल के 3 मिनट 4 मिनट मेडिटेशन में बैठना। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर भी आप कर्मेंद्रियों से डिटैच होते हो ना, तो आप अपने आप को रिचार्ज करने लग जाते हो। प्रिंसिपल है कर्मेंद्रियों से डिटैच होना, दोनों में सेम प्रिंसिपल है। फिर इसको थोड़ा सा और हम क्लैरिटी से आगे देखेंगे। तो मेडिटेशन क्या है? इट अलाउज टू डिटैच फ्रॉम सराउंडिंग्स इजीली एंड एनी टाइम ऑफ डे। राजयोग का मेडिटेशन की विशेषता, यहां क्यों आपको बोलते हैं कि ओपन आइड मेडिटेशन, ओपन आइड मेडिटेशन होगा तो आप कहीं भी है, ऑफिस में, बस में जा रहे हैं, कुछ काम नहीं है, थोड़ी देर के लिए आप मेडिटेशन स्थिति में बैठ सकते। लेकिन आंख बंद करके मेडिटेशन करने की अगर आदत होगी तो हर जगह नहीं कर सकते। आप खड़े हो तो आप आंख बंद करके नहीं खड़े हो सकते, कहीं ऐसे बैठे हुए हो सामान है, आप आंख बंद करके हो तो सामान चले जाएगा। तो आंख खोल के मेडिटेशन कर सकते। और दूसरा कि अगर आंख बंद करते ना तो नेचुरली हमको नींद की तरफ हम जाते। नींद एक अलग स्थिति है और मेडिटेशन एक अलग स्थिति, दोनों की प्राप्तियां हैं लेकिन दोनों की प्राप्तियों में फर्क है। तो राजयोग क्या है? जीवन की घटनाओं को इस तरह से देखने का तरीका सिखाता है कि मन में लगातार सकारात्मक विचार उत्पन्न होते। ये पॉइंट मैंने आपको यहां क्यों बताई मेडिटेशन की? कई लोग मेडिटेशन को बहुत एक सिंपल चीज समझते हैं, बस माइंड को कहीं लगाना है। नहीं, राजयोग मेडिटेशन एक वे ऑफ लाइफ है और ये नॉलेज बेस्ड है, और इस नॉलेज के आधार पर हम पूरे दिन में क्या विचार उत्पन्न करते हैं, हर परिस्थिति में किस तरह से सोचते हैं, हर जगह हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं, वो सब चीज इसमें आती है। तो एक सिंपल सा मेडिटेशन नहीं है कि 10 मिनट में बैठ गया, शांति में बैठ गया, ऐसा नहीं। लेकिन एक ज्ञान के आधार पर हर एक्टिविटी में कैसे करूं वो इम्पोर्टेंट है। तो मेडिटेशन भी दिखाता है और वो ज्ञान बेस्ड है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो मेडिटेशन के लिए ऐसा समझते हैं, हम आए बस ब्लैंक हो जाए। नहीं, राजयोग का मेडिटेशन नॉलेज बेस्ड है। इसलिए जब भी कोई हमारे ब्रांच पे जाता है, पहली बार जाता है, तो पूछता है कि भाई मैं आया हूं, मुझे मेडिटेशन अच्छा लगता है, तो सबसे पहले उसको बोलते हैं आप 7 दिन का कोर्स करो। क्यों? क्योंकि उसका फाउंडेशन नॉलेज में, नॉलेज बेस्ड मेडिटेशन है। आपका नॉलेज नहीं समझ में आएगी तो आप मेडिटेशन भी नहीं कर सकते। लेकिन नॉलेज बहुत सिंपल है, तो टाइम देता है, अच्छा ठीक है, कब आना है, कितना टाइम देना है, तो बोलते रोज आधा घंटा पौना घंटा आप आओ, 7 दिन आओ, तो आपको मेडिटेशन का सही तरीका सीख जाएगा। यहां भी हम वही कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम उतना नहीं होता, तो आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में समझाते हैं। तो मैंने जब शुरू किया, मैंने कहा कि हम अपने जीवन का 1/3 पार्ट इस एक्टिविटी में दे रहे हैं, नींद में। तो क्वेश्चन उठता है कि हम सो क्यों रहे, हमको क्या फायदा है सोने से? हाँ, कोई भी बताए, हम क्यों सो रहे, इतना सारा टाइम दे रहे हैं, क्या फायदा होता हमको नींद से? व्हाई डू वी स्लीप? हाँ जी, आपके टायर्डनेस को निकालने के लिए। ओके, हम क्यों सो रहे, रोज सोते हैं, हम क्यों सोते हैं? हाँ जी, एनर्जी रिकवर करने के लिए, थक जाते हैं तो एनर्जी रिकवर करने के लिए, माइंड को रेस्ट देने के लिए। तो क्वेश्चन ये है, हम क्यों सोते हैं? तो हम दोनों, माइंड और बॉडी, दोनों को रिचार्ज करने के लिए, दोनों में शक्ति बनने के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये स्लीप का प्राइमरी पर्पस बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए या माइंड को रिफ्रेश करने के लिए? बॉडी को नहीं, कौन समझते सिर्फ माइंड के लिए, कौन समझते सिर्फ बॉडी के लिए, और कौन समझते दोनों के लिए? अच्छा, मेजॉरिटी दोनों के लिए। तो मैं क्या बोलूंगा, दोनों का 50-50% है, इंपॉर्टेंस दोनों का इतना ही है कि आप समझते 60% बॉडी के लिए, 40% माइंड के लिए, या 70% माइंड के लिए, 30% बॉडी के लिए, क्या समझते? मतलब स्लीप से फायदा हो रहा है, लेकिन ज्यादा किसके ऊपर फोकस है? माइंड के ऊपर है। लेकिन आपके दिन, डे टू डे लाइफ में अगर आप देखेंगे ना, हमारा एक्सपीरियंस क्या है, किसी दिन आपने बहुत काम किया, सामान इधर से उधर उठाया, ये हुआ, फिजिकल एक्टिविटी, फिर क्या बोलते हैं, अभी मैं रेस्ट करने जा रहा हूं। तो हम लोग अक्सर करके स्लीप को बॉडी के साथ रिलेट करते हैं कि 90% बॉडी के लिए है और 10% माइंड के लिए। ये एक जनरल हमारी समझ है, बट ये फैक्ट नहीं है। और उसका एक छोटा सा एग्जांपल है, एक व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी पर है, मैनेजर है कोई ऑफिस में, एक किसान है, तो किसान आप देखेंगे कि कड़ी धूप में मेहनत कर रहा, और जो एडमिनिस्ट्रेटर वो क्या कर रहा है, घर में एसी में रह रहा है, एसी गाड़ी में जा रहा है, एसी ऑफिस में बैठता है, बड़ी से मस्त अच्छी सी चेयर में बैठा हुआ है, पूरे दिन कोई ऐसा कोई खास फिजिकल एक्टिविटी नहीं, वापस घर में आ जाता। तो मेहनत कितनी की उसने, किसान और इसके कंपेयर करेंगे तो किसान ने उसे 10 गुना मेहनत की होगी, उसे ज्यादा ही की होगी। अगर किसान आकर 10 घंटा सोता है, तो क्या हम कहेंगे कि मैनेजर 1 घंटा सोए तो काफी है? क्या समझते हैं आप? तो अक्सर करके हम देखते कि दोनों को बराबर नींद चाहिए होती है, और उसमें भी हम देखते किसान होता है, पॉसिबल है कि वो कम सोता हो, वो जल्दी उठ जाता हो, क्योंकि उसमें ज्यादा जल्दी खेत में जाना होता। तो आध्यात्मिकता और स्लीप थ्योरी बोलती है कि नींद का प्राइमरी पर्पस माइंड को रिचार्ज करना, 90% माइंड के लिए, 10% बॉडी के लिए। तो एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं, एक पहाड़ी है, आप उस पहाड़ी पे दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते एकदम टॉप में पहुंचे, और उसके बाद अचानक एक खाई है, क्या करोगे? आप दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते एकदम टॉप में पहुंचे, अचानक खाई है, क्या करोगे? रुक जाओगे, क्या करोगे? वॉकिंग करोगे, बट वॉकिंग साइड में करोगे, मतलब आगे तो नहीं जाओगे ना, खाई है, बड़ी डीप खाई है, नॉर्मल वॉक रनिंग में आप उधर रुकेंगे तो जंप करने का तो नहीं सोचोगे, वापस आ जाओगे। चलो और क्या, एनी अदर आंसर? कुछ हो सकता है, कोई बोले भाई एकदम टॉप में पहुंचे, अच्छी अच्छा नजारा होगा, थोड़ी देर बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। अच्छा, यही चीज वापस हो रही है सेकेंड टाइम,
लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि एक रूम है, रूम में एक बेड है, बेड के ऊपर आप सोए हुए हो और आपको एक सपना आ रहा है। सपना आता है सबको? अच्छा, सपने में आप भाग रहे हो, वही पहाड़ी है और वही आप दौड़ रहे हो। सपने में आप दौड़ रहे हो, टक 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 टक, एकदम टॉप पहुंचे, अचानक खाई है, क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? आता है ऐसा सपना कभी कभी, अचानक ऐसा कुछ हुआ एकदम, अचानक अभी खाई है, क्या करोगे? पहाड़ी वही है, कोई डिफरेंस नहीं, सेम पहाड़ी और आप भी वही हो, सेम स्पीड से दौड़ रहे हो। हाँ जी, जाग जाएंगे, डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, होगा ऐसे? लेकिन व्यक्ति तो सेम था, सिचुएशन सेम थी, रिएक्शन इतना अलग। फर्स्ट टाइम मैंने पूछा तो कई लोग सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, खाई आ गई, रुकना पड़ेगा, बात खत्म। सेकंड टाइम में इतने सारे आंसर्स, सेम सिचुएशन, सेम पर्सनालिटी, लेकिन कितना बड़ा रिएक्शन, कितना डिफरेंस। उसका रीजन सिंपल है, जब आप टॉप में पहुंचे तो आपको रुकना था, रुकने का जजमेंट कौन कर रहा है? माइंड। नींद में माइंड रेस्ट पर है, जजमेंट करने वाला कोई है नहीं, तो आप दौड़ते दौड़ते दौड़ जाते हो और आप गिर जाते हो, लेकिन हो कहां रहा है? ये सपने में हो रहा है, तो व्यक्ति घबरा के उठ जाता है ना। नींद का पर्पस क्या है? माइंड को रेस्ट देना। तो एक अच्छी नींद के लिए, तो आज के विषय में हम नींद के दो चीज, क्वांटिटी और क्वालिटी, दोनों का महत्व है। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और क्वालिटी कैसे होनी चाहिए। तो अच्छी नींद के लिए क्या जरूरी है कि जब आप सोते हो तो आपका माइंड और बॉडी दोनों कंफर्ट में होना चाहिए। आज हमारी नींद डिस्टर्ब इसलिए है कि हम इन दोनों चीजों को डिस्टर्ब करके सोते हैं, माइंड को भी और बॉडी को भी। माइंड को कैसे डिस्टर्ब करके सोते हैं? सोने से पहले बहुत सारा इंफॉर्मेशन लेते हो, कई होते पूरे दिन काम कर रहे हैं, शाम को ही फ्री मिले हुए आए, चलो टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, मोबाइल में कैचअप करते हैं करते हैं, तो आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन ले रहे हो फिर सो रहे हो। अब माइंड की विशेषता है कि एक बार आपने इन्फॉर्मेशन दिया तो बहुत टाइम उसके ऊपर सोचता है, धीरे धीरे धीरे, जैसे नहीं वो टॉप को ऐसे घुमाते तो घूमता रहता, फिर धीरे 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 स्लो होता है फिर। तो आपने सोने से पहले काम, स्लीप का पर्पस क्या था? माइंड को रेस्ट देना, लेकिन सोने से पहले आपने माइंड को खूब इन्फॉर्मेशन दे दिया, एक तरह से माइंड को बहुत काम दे दिया, माइंड को खूब डिस्टर्ब कर दिया, आप सोने गया, तो आपकी नींद की क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? और ये अनफॉर्चुनेटली हम सबकी लाइफस्टाइल है, हो गई है, क्या करें, ये सब टेक्नोलॉजी के कारण डे टू डे लाइफस्टाइल है। अगर आप अटेंशन नहीं दोगे तो नॉर्मल में यही लाइफस्टाइल है। कई लोग अटेंशन से देते हैं, नहीं नहीं रात को ये सब नहीं, बेकार की चीजें नहीं करेंगे, जो सुनना है न्यूज यूज पहले कर सकते हैं, थोड़ा सोने से कुछ टाइम पहले तक बेकार की चीजों का इन्फॉर्मेशन, लोगों के साथ कोई मन मुटाव, कोई क्वारल, ये सब चीजें अवॉइड करते, पता है मेरी नींद को इफेक्ट करेगा। और दूसरा, बॉडी को डिस्कम्फर्ट में कैसे डालते हो? पहले के जमाने में जब बिजली बिजली नहीं होती थी तो लोगों की लाइफस्टाइल में सनसेट के साथ वो भोजन कर लेते, अर्ली डिनर करते, और उसके कुछ टाइम के बाद सो भी जाते थे, लेकिन डिनर अर्ली होता था और फिर कुछ गैप होता था। आज क्या है, हमारा डिनर लेट है और हैवी है। अब आप इतना लेट सोए और इतना हैवी खाना खा के सोए, अब खाने को पचाने का काम किसका है, डाइजेस्ट करने का काम किसका है? बॉडी का। तो अभी बॉडी कंफर्ट में या अनकंफर्ट में? बॉडी को तो खूब काम दे दिया आपने, अब ये भी हमारी लाइफस्टाइल होगी। अब हमने बॉडी और माइंड दोनों को डिस्टर्ब करके अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल के सोया, तो हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो नेचुरली हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप डाउन होती है, और ये एक लाइफस्टाइल का है, और थोड़ा सा अटेंशन देंगे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अर्ली डिनर करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, वैसे भी कहते हैं ना ब्रेकफास्ट हैवी, लंच मीडियम और डिनर लाइट, थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। जितना मुझे न्यूज देखना है देखना कुछ टाइम पहले, सोने से कुछ टाइम पहले तक फिर मैं ये सब बंद कर दूं, ये तो एक लाइफस्टाइल है, मैं चेंज कर सकता हूं, कोई पहाड़ नहीं टूटेगा कि एक घंटा पहले मैंने अगर ये सब छोड़ दिया तो। मोबाइल में किसी से डिस्कस करना, कुछ बोलना, सब कर सकते हैं। सोने से कुछ टाइम पहले तक इस चीजों को अवॉइड करना, ये एक सिंपल आपके ऊपर है। आप लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज करते हैं, हर दिन का इसका असर है। स्लीप एवरीडे की एक्टिविटी है, एवरीडे का इसका इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा आपके लाइफ में, आपके हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ता। एक और चीज नींद के साथ बहुत अच्छी, बहुत जोड़ते हैं, वो है जिम्मेवारी। कई लोग कहते हैं कि बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं तो नींद के ऊपर प्रभाव पड़ता, भाई इतना ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नींद कैसे आई। तो एक बार हमारी दादी प्रकाशमणि, ये इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की चीफ थी बहुत टाइम तक, 69 से 2007 तक की चीफ थी, और बहुत ही डायनामिक और बहुत ही शक्तिशाली योगी आत्मा। तो एक बार एक मीडिया कॉन्फ्रेंस थी, और मीडिया कॉन्फ्रेंस में मीडिया वालों ने उनसे पूछा, दादी जी आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 130 कंट्रीज से ऊपर आपकी ब्रांचेस है, कितनी सारी सिस्टर्स तो डेडिकेटेड है, जब फैमिली है ना, फैमिली में दो बेटियां होती है तो भी माँ बाप को चिंता होती है, यहाँ तो इतनी सारी बहनें हैं, वो सब समर्पित है, सबकी जिम्मेवारी है, इतने सारे ब्रांचेस, इतने सारे स्टूडेंट्स, इतना सारा कार्य, तो रात को आप जब सोते हो तो आपको नींद आती है? तो दादी जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बोला जैसे ही मैं सोती हूँ एक करवट बदलती हूँ टक करके मैं सो जाती हूँ। तो मीडिया वाले तो इतने जल्दी मानते नहीं ना, बोले ऐसे कैसे हो सकता है। तो दादी जी ने बड़ा अच्छा बोला, बोला कि मैं बहुत समय से मेडिटेशन का जो अभ्यास करती हूं उसके कारण मेरे माइंड का ब्रेक फास्ट है, मेंटल ब्रेक जो है ना, क्योंकि मेरे को पता है रात को मुझे अभी सोना है, अभी सब चीजों को फुल स्टॉप लगाना है, तो टक फुल स्टॉप लगाती हूं सो जाती। हम लोग सब भी फुल स्टॉप लगाते हैं, सोने के समय तो फुल स्टॉप लगाना होता है, लेकिन हमारा ब्रेक क्या होता है, तो किसी को 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जिसका जितना ब्रेक। गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है, गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है, गाड़ी को स्लो करने के लिए, करेक्ट रॉन्ग, गाड़ी में ब्रेक होता है गाड़ी को फास्ट करने के लिए, करेक्ट, गाड़ी में ब्रेक होता है गाड़ी को फास्ट करने के लिए। अगर मैं हूं और मेरे साथ एक और मेरा दोस्त है, हम दोनों गाड़ी में जा रहे हैं, मेरा ब्रेक पावरफुल है, उसका ब्रेक बहुत कमजोर है, हाईवे पे वो किस स्पीड पे चलेगा और मैं किस स्पीड पे चलूंगा, मैं किस स्पीड पे जाऊंगा, मैं तो काफी स्पीड जाऊंगा, वो किस स्पीड पे जाएगा, वो तो क्योंकि उसको पता है यहां ब्रेक लगाऊंगा तो वहां लगेगा, तो उतना वो मार्जिन रख के स्लो से कि भाई यहां रुको तो वहां तक क्लियर है, तब मुझे पता है मैं तो जहां चाहूं टक करके मैं रोक सकता हूं, तो मैं तो बहुत फास्ट जा सकता हूं। उसका एक बेटर शब्द है कि मेडिटेशन से मुझे अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल बढ़ता, तो जब मैं जहां बुद्धि लगाना चाहूं मैं लगा सकता हूं, कॉन्सेंट्रेशन भी उसी को बोलते, एकाग्रता, जब जो कार्य करना है मैं मन बुद्धि उसमें लगाऊं, है ना। अच्छा, अभी नींद को समझने के लिए कुछ यंत्रों का आविष्कार हुआ, तभी हम लोगों को नींद के बारे में पता चला। तो इसमें से कई यंत्र, कोई भी यंत्र से आप अवगत हो, मतलब कॉमन कौन सा है इसमें सबसे ज्यादा, ईसीजी सबसे कॉमन है, लेकिन स्लीप के हिसाब से स्टडी करने के लिए ईईजी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमारे ब्रेन की वेव एक्टिविटी को मेजर करता। तो ईईजी क्या होता है, हमारे ब्रेन भी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी पे चलता, तो वो उस फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। तो जितना वो शांत होगा ईईजी आपका, जितना वो स्लो होगा, कम वैल्यू होगी, उतना मन शांत होगा। तो कहीं ना कहीं वो हमारे मन कितना स्थिर है उसका मेजरमेंट करता, फास्ट, स्लो, वेरी स्लो, वेरी फास्ट, माइंड अलग अलग स्टेजेस में जाता। तो नींद में क्या करते हैं, नींद में लेबोरेटरी है, नींद में सुला दिया, ये सब यंत्र कनेक्ट कर दिया, पूरे रात ऑब्जर्व करते है ना, तो माइंड कैसे चल रहा है, हार्ट रेट कैसे चल रहा है, ब्लड प्रेशर कैसा है, आंखों की पलके है ना, हम बोलते हैं वो भी बीच बीच में हिलती है, उसको मेजर कर रहे हैं, तो ये सब मेजर करके वो समझते हैं कि पूरे हमारे नींद में हो क्या रहा है, तभी तो हम उसके ऊपर समझेंगे कि फाइनली नींद में कितनी नींद चाहिए, क्या अलग अलग स्टेजेस क्या है, कैसे हम क्वालिटी बढ़ाएं। तो जब ये सब किया तो ईईजी से हमको पता चला कि हमारा माइंड 4 स्टेजेस में होता है। कौन सी स्टेज है, एक अभी हम लोग जो जागे हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बीटा फ्रीक्वेंसी, 13 से 30 हर्ट्ज, चैटर यानी हलचल है, आप बात कर रहे हो, देख रहे हो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, किसी से कुछ डिस्कशन कर रहे हो, जब माइंड एक्टिव है तो नॉर्मली हम लोग इस स्टेज में होते हैं, 13 से 30 हर्ट्ज तक हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। फिर अगर हमारा माइंड शांत होता है, नींद होती है तो स्टेजेस होती है, जैसे जैसे शांत होता है तो एक लेवल नीचे जाता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा फ्रीक्वेंसी, जिसमें हल्की शांति, माइंड शांत होता 8 से 12 साइकिल्स पर सेकेंड। फिर हम गहरी नींद की तरफ जाते हैं तो माइंड और शांत होता है, उसको हम लोग बोलते हैं थीटा फ्रीक्वेंसी, माइंड 5 से 8 साइकिल्स पर सेकेंड शांति की तरफ। और कुछ समय के लिए माइंड सबसे शांत डेल्टा फ्रीक्वेंसी 2 से 4 हर्ट्ज, सबसे गहरी शांति में जाता। हमारा माइंड ये 4 स्टेजेस में वेरी करता। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गहरी शांति डेल्टा फ्रीक्वेंसी। हम जब जागे हुए हैं तो हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, एनर्जी खर्च कर रहे हैं ना, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, माइंड लगा रहे हैं, तो पूरे दिन में हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। और रात को हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, अगले दिन नहीं तो कैसे कंज्यूम करेंगे भाई। रात को मोबाइल को चार्ज ही नहीं किया तो अगले दिन आप यूज कर सकते हो? तो रिचार्ज आपका रात में होता है और दिन में क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। रिचार्ज कब होता है? नींद की सारी स्टेजेस में रिचार्ज नहीं होता, सबसे गहरी नींद जो चौथी स्टेज है उसमें ही रिचार्ज होता। तो इसको एक सिंपल से ग्राफ में दिखाया हुआ है और मैं ये आपको ये ग्राफ दिखा देता हूं। एक ही ग्राफ है और बहुत सिंपल है। तो इस ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं कि एक व्यक्ति सो रहा है ना, सो रहा है, रात को 11 बजे सो रहा है और सवेरे 6 बजे उठ रहा है, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसका माइंड इन 4 स्टेजेस में वेरी कर रहा। तो सबसे पहले वो जागा हुआ है, फिर जैसे जैसे शांति, हल्की शांति, शांति, गहरी शांति, और फिर वापस उसका माइंड ऊपर की ओर आता। तो मैं एक ही साइकिल को थोड़ा सा और क्लियरली बताता हूं। एक साइकिल में देखो, सबसे पहले एक साइकिल करीब कितने मिनट की है, 100 मिनट की होती है, एवरेज 100 मिनट की होती। सबसे पहले व्यक्ति जागा हुआ है, फिर हल्की शांति, फिर शांति में जा रहा है और कुछ समय के लिए गहरी शांति। तो ये जो गहरी शांति, ये 100 मिनट में करीब 20 मिनट हम इस गहरी शांति में रहते हैं। उसके बाद वापस माइंड ऊपर की ओर जाता है और ये हरा पोर्शन है, इसको हम लोग रेम स्लीप बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। आप किसी व्यक्ति को सोते हुए देखेंगे ना, हर थोड़े टाइम के बाद उसकी पलकें ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी हिलेगी, फिर शांत हो जाएगी, फिर पलकें हिलती। लेकिन इसमें सबसे बड़ी विशेषता है क्या है कि माइंड जैसे इसमें, जब जागृत अवस्था में माइंड जिस स्टेज पे है, इसमें भी माइंड इस स्टेज पे है। तो जागृत अवस्था में माइंड जब 13 से 30 हर्ट्ज है तो हम लोग एनर्जी को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इस समय क्या हो रहा है, एनर्जी यूज हो रही है और इस समय एनर्जी जनरेट हो रही है ना। तो ये एक साइकिल है। अब वो ग्राफ को वापस आप देखो, तो व्यक्ति सो रहा है, गहरी नींद की तरफ जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर गहरी नींद की तरफ जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर गहरी नींद की तरफ, फिर ऊपर आता है, फिर गहरी नींद, फिर ऐसे। तो हम देखते हैं कि पहली 2 साइकिल में इसको ये डेल्टा फ्रीक्वेंसी पूरा 20-20 मिनट ऐसा करीब मिलती है उसको, लेकिन तीसरी साइकिल में उसको ये थोड़ा मिलता, करीब 10 मिनट मिलती, और चौथी साइकिल में उसको ये डेल्टा फ्रीक्वेंसी मिलती ही नहीं, ये कम हो जाती। लेकिन एक चीज बढ़ता रहेगा, ये जो हरा पोर्शन है ना, ये हर साइकिल में बढ़ता जाएगा, जिसको रेम स्लीप बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। अब मैं आपको रिवाइज करता हूं। सोने का पर्पज था हमको रिचार्ज करना था, री एनर्जाइज करना। रिचार्ज होता है जब आप गहरी नींद में होते हो, यानी डेल्टा फ्रीक्वेंसी। डेल्टा फ्रीक्वेंसी आपको कितने साइकिल मिली, कितने साइकिल में मिली, 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल। एक साइकिल कितने मिनट की थी, 100 मिनट की। 3 साइकिल कितने मिनट हुए, 300 मिनट कितने घंटे हुए, 300 मिनट कितने घंटे हुए, 5। स्लीप थ्योरी कहती है कि एक व्यक्ति को 24 घंटे में अगर 5 घंटा भी नींद मिले तो उसके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए पर्याप्त है। अधिकतर लोग समझते हैं 6 से 8 घंटा। तो ये पहला मिसकंसेप्शन, 5 घंटे भी अच्छी नींद हो गई काफी। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने शुरू में एक चीज बताई थी ना कि कोई भी बोले 4 घंटा सोता हूं, 5 घंटा सोता हूं, गलत है, क्योंकि हम 100-100 मिनट में सो रहे हैं, 100 मिनट के साइकिल में सो रहे हैं। 100 मिनट सोते फिर जैसे एक जागृत अवस्था होती, फिर 100 मिनट सोते फिर जा, तो कोई भी बोले मैं 6 घंटा सोता हूं तो एक्चुअली कंटिन्यूस 6 घंटा वो नहीं सो रहा। अब इसका इम्प्लीकेशन सिक्योरिटी फोर्सेस में बहुत है। क्यों? क्योंकि बहुत बार वो जवान या ऑफिसर कहीं ड्यूटी पर है, उसको शिफ्ट सिस्टम में ड्यूटी करना पड़ता है। हमारे बॉर्डर पे रो ड्यूटी करते हैं तो शिफ्ट सिस्टम में ड्यूटी करते हैं, उनको इस बात का बहुत सारा टेंशन रहता है कि हमें नींद ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि 10 बजे सो के 6 बजे उठना ये तो हमको मौका मिलता ही नहीं। लेकिन हम लोग वास्तव में क्या कर रहे हैं, हम साइकिल्स में सो रहे हैं। तो वो भी क्या कर रहा है, वो रात में हो सकता है कि कंटिन्यूस नहीं सो रहा, हो सकता है दो ही साइकिल सो रहा हो, लेकिन फिर वो दिन में एक साइकिल सो रहा है या दिन में डेढ़ साइकिल सो रहा है, जो भी है। तो 24 घंटे में उसको वो मिल रहा है लेकिन उसको ये पता नहीं। तो वो इस बात का स्ट्रेस सारा टाइम रखता है कि मेरी ड्यूटी ऐसे है कि मुझे नींद कभी मिलती ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग स्लीप में भी साइकिल्स में सो रहे हैं और वो भी साइकिल में सोता है। ये मैं ये जरूर कहूंगा कि आइडियल स्लीप वो नहीं है, आइडियल स्लीप में तो कंटिन्यूस सोए तो ही अच्छा है, लेकिन आइडियल कंडीशंस तो आजकल कहां मिलती। मगर ये लैक ऑफ नॉलेज के कारण जितना मैं अपने दिमाग में स्ट्रेस रखता हूं ना, नींद ही नहीं मिल रही, नींद ही नहीं मिल रही। आपको पता है कुछ समय पहले एक स्टडी की थी हम लोग को, जब स्ट्रेस मैनेजमेंट का बोला था ना, बीएसएफ के लिए प्रोजेक्ट लेना था, तो एक बीपीआरएनडी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर स्टडी थी और उन्होंने स्ट्रेस के बहुत सारे कारण निकाले, पैरामिलिट्री फोर्सेस में स्ट्रेस क्या है। और उसमें नंबर वन रीजन था, 77% पार्टिसिपेंट्स ने बोला कि लैक ऑफ स्लीप इज द बिगेस्ट रीजन फॉर स्ट्रेस, नंबर वन रीजन। तो उनका क्या रीजन था, काफी हद तक वो लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि नींद किस तरह से होती है, किस तरह से हम साइकिल्स में सोते हैं, वो नॉलेज नहीं है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है कि कम से कम हमको पता होता है कि किस तरह से ये स्लीप साइकिल होती है। फिर एक पार्ट है मैंने बोला रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट, आप देखते हो ना ऐसे बीच बीच में से आंखें पलके हिलती है। तो इसकी एक बड़ी अच्छी विशेषता है कि इस समय आपका बॉडी पैरालाइज हो जाता है। पैरालाइज का क्या मतलब होता है, आप हाथ पांव कुछ नहीं चला सकते। ऐसा क्यों होता होगा, कुछ देर के लिए जब तक आप इस रेम स्लीप में हो आपका शरीर पैरालाइज हो जाता है। तो उसका रीजन है, ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म कैसे है, रेम स्लीप वो फेज है जहां हमको सपने आते, माइंड चल रहा है ना इस समय फुल स्पीड, क्योंकि इस समय सपने आ रहे हैं। और सपना जब आ रहा है तो सपने में कई चीजें, अगर मेरी किसी के साथ लड़ाई है, उसने मुझे घुसा मारा, तो मैं क्या करूंगा, धड़ाम करके घुसा मारूंगा। तो मैं अपना ड्रीम एक्ट नहीं कर दूं, अगर इधर कोई सो रहा होगा तो क्या होगा, तो उसको लग जाएगी, तो मेरा बॉडी पैरालाइज है, मैं हाथ ऐसे हिला नहीं सकता। अच्छा कोई नहीं भी होगा तो क्या होगा, मैं अपने आप को इंजर नहीं करूं। आप सबको अनुभव है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा सपना आ रहा है, अचानक ऐसे कहीं ट्रेन में से गिर रहे हो, ये कर रहे हो, आप हिलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन थोड़ी देर आप हिल नहीं पा रहे, फिर थोड़ी देर के बाद आपका आपके ऊपर पूरा कंट्रोल आता, होता है ऐसा अनुभव है, हिलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कुछ टाइम के लिए आपका कंट्रोल नहीं है। ये डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का। अब आप इसमें देखेंगे ना, जैसे जैसे साइकिल बढ़ रही है तो ये ग्रीन पोर्शन बढ़ता जाता। अब ये ग्रीन पोर्शन क्या है, इस समय माइंड जैसे जागृत अवस्था में, इसको हम स्यूडो स्लीप भी बोलते हैं। इसलिए एक फिक्स पीरियड के बाद आप सोते हो ना, तो आप एनर्जी जनरेट नहीं कर रहे हैं, जैसे जागृत अवस्था में एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो वैसे कंज्यूम करना चालू हो जाता। तो अगर आप रोज समझो 6-7 घंटे सोते हो और एक दिन मैंने बोला आप 16 घंटे सो लो, आप 16 घंटे के बाद उठोगे तो आप ज्यादा थके हुए जागोगे, क्योंकि आप पिछले कई घंटों से आप एनर्जी यूज करने लग गए, कंज्यूम कर रहे हो। तो एक फिक्स पीरियड के बाद आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, आपका नुकसान हो रहा है, एनर्जी तो जा रही है लेकिन उससे भी ज्यादा आपका टाइम जा रहा है, क्योंकि टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना, कुछ कर नहीं, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा। अब इसमें एक लेवल, सबसे पहला बीटा बोला जागृत अवस्था और एक लेवल नीचे अल्फा, इसका बहुत महत्व है। ये एक तरह से बोलते एक बहुत रिलैक्स स्टेट, शांति की स्टेट। और मैं इसका महत्व इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेडिटेशन में ये स्टेज को पहुंचना कोई भी व्यक्ति के लिए बहुत सरल है। मतलब यहां अगर एक बहन आपको गाइडेड मेडिटेशन करे, करवाए और आप उन्हीं संकल्पों को अपने माइंड में भी दोहराएंगे, आपका माइंड ये एक लेवल नीचे आ जाएगा, बहुत इजी है ना। हमारे पास कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें आप मेजर कर सकते हो कि आपका मन शांत हो रहा है, वो मेजर भी कर सकते हो। कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति भी जिसको मेडिटेशन का ज्यादा नहीं, वो बस उन थॉट्स को भी रिपीट करे ना, तो एक लेवल वो नीचे ला सकता है। तो सोचो देखो मेडिटेशन की कितनी पावरफुल ये विधि है कि कितने भी बिजी एरिया में अगर थोड़ा टाइम आप अपने आप को वो मेडिटेशन के द्वारा अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, कोई भी हो, आप अपने आप को थोड़े से टाइम में अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हो। ये मंडे से संडे की एक अच्छी फोटो है इंटरनेट पे, मंडे को चेहरा कैसे रहता है, ट्यूसडे को कैसा, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कई जगह होता है ना वीकेंड होता है, फिर संडे, फिर संडे रात को कैसा चेहरा होगा, क्योंकि अभी क्या आने वाला है। तो ये चित्र है तो बड़ा ह्यूमर का, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देता, और इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, क्योंकि देखो जीवन में इस ये सब क्यों हो रहा है, हम बाहर की सिचुएशन, मंडे में बहुत काम है, ट्यूसडे में ये है, सैटरडे को भी वीकेंड आने वाला है, संडे को छुट्टी है, बाहर का एनवायरनमेंट मेरे अंदर की खुशी, मेरी संतुष्टता, मेरे जीवन का सब कुछ गवर्न कर रहा है, बाहर का सर्कमस्टेंसेस। ये प्रकृति का नियम है कि कोई चीज पावरफुल होगी ना तो वो लेस पावरफुल चीज को इन्फ्लुएंस करेगी, शक्तिशाली चीज एक कमजोर चीज को इन्फ्लुएंस करती है। तो अभी हो क्या रहा है कि माइंड में, माइंड अगर एक बैटरी की तरह है ना, तो रोज जब हम रात को सोते हैं तो चार्ज होता है और फिर दिन में डिस्चार्ज होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, डिस्चार्ज रेट बहुत फास्ट है और जो रिचार्ज का मैकेनिज्म है नींद, वो आज थोड़ी सी डिफेक्टेड है, नींद से जितना हमको फायदा होना था नहीं होता। तो क्या होता है, हम लोगों की बैटरी पूरी चार्ज नहीं है, कमजोर है, माइंड कमजोर है, आंतरिक स्थिति कमजोर है, तो बाहर की ये सब चीजें हमको अफेक्ट कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है। अब बाहर की चीजें, बाहर का सर्कमस्टेंसेस, वो आपके फेवर में होगा या आपके अगेंस्ट रहेगा। आजकल मेजॉरिटी एनवायरनमेंट क्या है, मेजॉरिटी एनवायरनमेंट तो आपका, आपको एफोर्ट डाल के अपने आप को स्टेबल रखना, नहीं तो सब चीजें आपके माइंड को हलचल में करने वाली, अशांत करने वाली ऐसी चीज। लेकिन बॉटम लाइन क्या है, माइंड रिचार्ज है तो हर परिस्थिति में आप अच्छे रह सकते हो, फेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी सिचुएशन ऊपर आप इफेक्ट नहीं होंगे। माइंड वीक है तो छोटी सी चीज भी, अब एक छोटा सा ग्लास उठाना है एक शक्तिशाली व्यक्ति के लिए घटक उठाएगा, एक कमजोर व्यक्ति है तो ग्लास उठाने में भी उसको तकलीफ होगी, ग्लास तो वही है लेकिन व्यक्ति शक्तिशाली है उसको ईजी है, व्यक्ति कमजोर है उसके लिए डिफिकल्ट। दूसरा, नींद के साथ इमोशंस का बहुत कनेक्शन है और इसीलिए नींद को प्योरली साइंस या डॉक्टर नहीं समझा सकता, बहुत सारे इमोशंस है और उसके साथ कनेक्शन है। जैसे आप देखेंगे ना बिजनेस में भी, जैसे कभी कभी होता है बिजनेस में कोई विशेष पीरियड होता है जिसमें उनका खास एक्स्ट्रा बिजनेस होता है ना, पीक बिजनेस, उस समय उसको कोई नींद नहीं आएगी क्योंकि उस समय उसको प्राप्ति है, खुशी है, उमंग है, उत्साह है, तो उसको नींद नहीं आएगी। तो कितने ही सारे इमोशंस है, हर इमोशन का आप देखेंगे नींद के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और सिंपल सा कनेक्शन, अगर पॉजिटिव इमोशंस है तो वो आपकी एनर्जी को कंजर्व करता है, नेगेटिव इमोशंस है वो आपकी एनर्जी को बहुत फास्ट डिप्लीट करता। दूसरा है आदत, हैबिट। कई लोग बोलते हैं कि भाई मैं 8 घंटे नहीं सोऊंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा, 8 घंटा तो मुझे सोना ही है। ये उसने एक हैबिट बना दी, हैबिट के वश वो ये बोल रहा, नहीं तो जो रिक्वायरमेंट है वो कम है, लेकिन अगर आपने हैबिट बना ली तो आपको हर समय ये लगेगा बस मुझे इतनी चाहिए। तो हैबिट तो आप अगर एक हैबिट बनाए हो तो हैबिट को चेंज भी किया जा सकता है, बट एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है वो हमें मालूम होनी चाहिए। तो सवेरे का समय हम सब, हाँ आप इधर देखते हो मेडिटेशन करते हैं, ये करते हैं, तो अब आपने जो समझा, तो सवेरे जब व्यक्ति जागेगा तो उसका ब्रेन कहेंगे, माइंड कहेंगे, मेंटल एनर्जी बैटरी क्या होगी, किस स्टेज में होगी, फुल्ली चार्ज या डिस्चार्ज स्टेज में होगी, फुल्ली चार्ज। तो फिर सवेरे उठ के मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, बैटरी तो पूरी चार्ज है वैसे ही। हाँ जी, जब बैटरी फुल्ली चार्ज है या मैक्सिमम चार्ज है तो सवेरे उठ के मेडिटेशन क्यों करना चाहिए। हाँ जी, माइंड फ्रेश रहता, मेडिटेशन तो माइंड को फ्रेश करने के लिए करते हैं, पहले से फ्रेश है तो फिर मेडिटेशन क्यों करें। हाँ, फास्ट कनेक्ट होंगे। हाँ जी, बाहर शांत है ठीक है, लेकिन चार्ज ही रहेगी नहीं। हाँ जी, तो देखो मेडिटेशन का पर्पस, राजयोग मेडिटेशन सिर्फ शांति के लिए नहीं है, सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए भी है, और उसके लिए मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। और मन एकाग्र जब होगा, जब मन पावरफुल होगा, सवेरे मन पावरफुल होता है तो बड़े आराम से उस सुप्रीम से कनेक्ट हो सकते हो। अभी आजकल हमारे इधर तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और पहले के टाइम में, अब तो जैसे हर चीज का थोड़ा सा चेंज होता, पहले के टाइम में योग के ऊपर बहुत एम्फेसिस था, तो बहुत जगह है ना, हमारी जो पुरानी दादियां थे वहां क्या होता था, ये रात भर योग का प्रोग्राम होता था, फुल नाइट मेडिटेशन, और वो बड़े आराम से पूरी रात एकदम चेहरा देखो खिला हुआ, क्यों? क्योंकि खुशी और उमंग और उत्साह उसकी प्राप्ति है, तो उनको थकावट नहीं होती। तो राजयोग मेडिटेशन सिर्फ शांति के लिए नहीं है, शांति के साथ खुशी और आनंद की प्राप्ति। इसीलिए अब वही मैं शाम को भी मेडिटेशन करूं तो पूरे दिन में माइंड टायर्ड होता है, तो मुझे माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने में मुश्किल होता है, इसलिए सवेरे अगर मैं मेडिटेशन करता हूं तो शांति तो है लेकिन सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। और ये भी लाइफस्टाइल छोटा सा चेंज है, जब हम समझते हैं कि नींद की रिक्वायरमेंट इतनी है तो व्यक्ति सवेरे उठ सकता है आराम से, और वो जो पावरफुल टाइम है उसको यूटिलाइज कर सकता है। तो नींद और स्लीप और मेडिटेशन का बहुत कनेक्शन है। स्लीप में आप में देखेंगे ना, ये सब पैरामीटर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक रेट, सांस लेना, सब चीज स्लो होगी। और वही चीज अगर कोई व्यक्ति मेडिटेशन कर रहा है और अगर आप मेजर करेंगे ना, ये सब पैरामीटर्स कम होंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा चीज है ईईजी पैटर्न। ईईजी पैटर्न क्या था? माइंड, माइंड उसका स्लो होता है मेडिटेशन में, माइंड स्लो होता है और ये मेजर कर सकते हो। जैसे साइंस में स्लीप में मेडिटेशन, स्लीप की स्टेज में आप मेजर कर रहे हो माइंड स्लो हो रहा है, वैसे मेडिटेशन में भी आप मेजर कर सकते हो। तो अभी ये सब लोग को समझ में आया कि जैसे माइंड स्लो वेव्स जनरेट करेगा तो ये आपके लिए बहुत फायदे की चीज है, ये स्ट्रेस से मुक्त करेगा, आपको खुश रखेगा। प्रिंसिपल सबको समझ में आ गया कि माइंड को स्लो करेंगे तो हमको बहुत प्राप्ति है। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे वेज है, मेथड्स है, लोगों ने निकाला कि कैसे कि हम माइंड को स्लो कर सके, कई तरह के मेडिटेशन टेक्निक है। तो मैं राजयोग का मेडिटेशन के बारे में बता रहा हूं कि राजयोग का मेडिटेशन से हमको कैसे फायदा होता है। जैसे ये लाइन दिख रही है, इसके ऊपर एक प्रोसेस किया, प्रोसेस एक्स, और लाइन बदल गई, इसकी लेंथ बदल गई, तो आप क्या समझते हो, लाइन छोटी हुई, बड़ी हुई या सेम हुई? छोटी हुई, बड़ी हुई या सेम हुई? ऐसे ये लाइन थोड़ी बड़ी है, लेकिन अधिकतर लोग बोलेंगे कि पता नहीं आप बोल तो रहे हो लेकिन लग तो नहीं रहा। अच्छा, सेम चीज है, वापस आपने किया एक प्रोसेस वाई किया और रिजल्ट ये हुआ, और मैंने यही क्वेश्चन पूछा, लाइन छोटी है, बड़ी है, सेम? कोई डाउट नहीं है। तो कभी कभी कोई प्रोसेस को बताने के लिए एग्जाम्पल एक आपको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग देना चाहिए। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने, ये है दादी जानकी, क्योंकि 2007 से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के चीफ थी, 2000 कोरोना के जस्ट पहले तक, 20 तक है ना, तो उसी समय उन्होंने शरीर छोड़ा। तो दादी जानकी की ये विशेषता थी कि वो मेडिटेशन उनका बहुत पावरफुल था, योग बहुत पावरफुल था, और इनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था 1978 में, ये ईईजी पैटर्न। तो जब ये जागी हुई थी तो ईईजी चेक किया, अभी आपका ईईजी चेक करेंगे तो क्या फ्रीक्वेंसी आएगी, क्या फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए? बीटा फ्रीक्वेंसी बोला ना, 13 से 30 हर्ट्ज। बीटा के बाद क्या था? अल्फा। उसके बाद क्या था? थीटा। उसके बाद क्या था? डेल्टा। दादी जानकी जब वो जागी हुई थी उसका माइंड डेल्टा फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा था, जो हम लोगों का कब होता है? जब माइंड सबसे शांत, सबसे गहरी नींद, तो उस समय उनको टाइटल मिला द मोस्ट पावरफुल माइंड ऑन अर्थ, डेल्टा वुमेन। हम लोग कुछ समय पहले पूना में गए थे, तो दादी जानकी पूरे विदेश में जो सेवा हुई ब्रह्मा कुमारी की, उसके लिए उनको खास निमित्त बनाया। तो पूना में जहां वो सेंटर में थी वहां से फिर वो गई, तो लास्ट एक फोटो थी, एयरपोर्ट पे उनको छोड़ने जा रहे हैं, तो उनके पास एक छोटा सा बैग था और वो विदेश सेवा पे जा रही थी। और उससे पहले जब उन बाबा से पूछा तो बाबा ने बोला आपको विदेश में जाके सबकी सेवा करनी है। तो उन्होंने बोला कि मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती, मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूं, मैं क्या करूंगी। बाबा ने उनको कहा कि आपका योग है ना, वो एक क्वालिफिकेशन में सारे क्वालिफिकेशन आ जाते, आप निश्चिंत रहो, बाकी सब हो जाएगा। तो एक महिला अनपढ़ मुश्किल से चौथी पांचवी क्लास पढ़ी होगी, अंग्रेजी नहीं आती, एक छोटा सा बैग लेके विदेश गई और आज 140 कंट्री में सेंटर्स। ताली बजाना। किस आधार पर? तो जैसे मैंने शुरू में बताया, एक वीक माइंड का शरीर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होता है, तो एक पावरफुल माइंड का शरीर पर कैसा इफेक्ट होगा? पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो दादी जानकी ने जब शरीर छोड़ा तो उनकी एज, और वो लास्ट तक सेवा कर रही थी, पूरे वर्ल्ड में चक्कर लाती रही थी, 104 ईयर्स के ऊपर शरीर छोड़ा, और 104 साल की उम्र में भी वो सारे विश्व में चक्कर। तो देखो एक कैसे एक पावरफुल माइंड शरीर को भी चला रहा। तो अच्छी नींद के लिए चार विशेष चीजें। सबसे पहला क्या है? फूड मैनेजमेंट। फूड के बारे में क्या बताया, क्या करना चाहिए? कम खाना और अर्ली डिनर, मतलब डिनर के लिए लाइट डिनर एंड अर्ली डिनर। माइंड मैनेजमेंट, माइंड के लिए क्या है? सोने से कम एक डेढ़ घंटा पहले सारा ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इससे थोड़ा सा दूर। दूसरा भी इफेक्ट है, ऐसा नहीं, और भी उसका डायरेक्ट इफेक्ट है, वो जो स्क्रीन होता है ना उसका, उसके कारण भी माइंड के ऊपर इफेक्ट होता है, और वो भी। तीसरा वाटर मैनेजमेंट भी बोलते हैं, कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा पानी पी के सोते तो फिर वॉशरूम में आपको बीच बीच में उठना पड़ेगा, तो वो भी कहीं आपके स्लीप को डिस्टर्ब करता है। और चौथा है टाइम मैनेजमेंट, कोशिश करके अगर आपका एक फिक्स सोने का टाइम हो और फिक्स जागने का टाइम हो तो बेनिफिशियल है, नहीं भी है तो कम से कम हमको नॉलेज हो कि कैसे हम साइकिल्स में सोते हैं, और हम 24 घंटे में अगर हमारी वो मीट करती है तो हम अननेसेसरली उसका स्ट्रेस नहीं ले। और सोने से पहले, क्योंकि पूरा सोने का पर्पस है कि माइंड को हमको शांत करना है, तो माइंड को शांत करने का एक बहुत अच्छा तरीका है मेडिटेशन। तो आप थोड़ा भी मेडिटेशन सीखेंगे तो बहुत जल्दी आप माइंड को शांत कर सकते हैं, और फिर सोएंगे तो आपको एक गहरी नींद आएगी। मैंने बोला ना, जितना इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वालिटी है। क्वालिटी ऑफ स्लीप रहेगा तो आप वही थोड़े से समय में आप उतनी अपने आप को रिचार्ज कर सकते हो। कई लोग बोलते हैं हमको मेडिटेशन नहीं मालूम या नहीं सीखा, टाइम लगेगा, तो उसका दूसरा तरीका है कि आप कुछ पॉजिटिव चीज पढ़ो। पॉजिटिव थॉट्स भी माइंड को स्लो करता है, नेगेटिव थॉट माइंड को फास्ट करता है, वैसे पॉजिटिव थॉट्स भी माइंड को स्लो करता है। तो अगर हम ये थोड़ा सा अपने जीवन में थोड़ी सी लाइफस्टाइल को चेंज करें, पहले थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले, थोड़ी सी लाइफस्टाइल को चेंज करें, तो आपके जीवन भर इसका फायदा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस सब्जेक्ट पे बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज आपके घर में, परिवार में, बच्चों में, कलीग्स, इधर आप देखेंगे स्लीप की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर आपको ये विषय समझ में आता है, विषय के बारे में बेसिक चीजें अंडरस्टैंडिंग होती है, तो आप उनको भी अच्छी तरह से गाइड कर सकते हो। तो लास्ट में फिर एक क्वेश्चन से एंड करें कि वो शुरू में हमने देखे थे जो सबसे बड़े जानवर थे वो सबसे कम सो रहे थे, तो क्यों वो सबसे कम सो रहे थे? अभी आप क्या समझते हो? जो हमारा एलिफेंट और जिराफ, क्या रीजन हो सकता होगा? हाँ जी, स्ट्रेस नहीं है। अच्छा, और कुछ? सफिशियंट, फर्स्ट टू साइकिल में सफिशियंट उनको मिल जाता। अच्छा, खैर उनकी साइकिल अलग होगी, ऐसा नहीं है कि हमारे मनुष्य का जैसा है। तो आप देखेंगे ना, एनिमल किंगडम में स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण होता है फूड, और फूड का भी दो प्रॉब्लम होती है, एक उसको अपने खाने के लिए मेहनत करनी है, दूसरा कोई उसको खाना नहीं बना दे उसकी भी फिक्र रहती है उसको। तो ये जो बड़े लैंड एनिमल्स है उनको, वेजिटेरियन है एलिफेंट जिराफ, तो उनको अपना खाना एबंडेंट है प्रकृति में, और दूसरा क्योंकि बड़े हैं शक्तिशाली है तो उनको दूसरों का भी भय इतना नहीं होता, तो इसीलिए उनको तनाव नहीं है, माइंड की मेंटल एनर्जी कम यूज होगी, बैटरी कम डिस्चार्ज होगी, तो रिचार्ज करने में कितना टाइम लगेगा? कम चाहिए होगा ना टाइम। तो ये एक एजुकेटेड गेस होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही रीजन होगा, बट बहुत अगर हम नींद के बारे में समझेंगे तो एक अच्छा रीजन हो सकता है। नहीं तो देखो, हम लोग नींद को किससे कनेक्ट करते थे? बॉडी के साथ। तो कोई बॉडी के साथ कनेक्ट करे, सबसे बड़े जानवर तो सबसे ज्यादा सोना चाहिए, कितना कम, जिराफ दो घंटा भी नहीं सो रहा। तो देखो, नींद का माइंड के साथ सबसे ज्यादा कनेक्शन है ना। तो लास्ट में अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं जवाब दूं, नहीं तो फिर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर आपका नेक्स्ट सेशन। हाँ जी बोलिए। एज का कि मैंने टाइम कम था, वरना एक दो वीडियो भी थी। तो एक्चुअली हम लोग बोलते हैं स्लीप थ्योरी ना 7 से 70 ईयर्स जनरली इसके लिए लागू होती है। बहुत छोटी उम्र में, छोटा बच्चा कितना हो तो जन्म में 18-18 घंटे सोएगा, तो वहां लागू नहीं होती। और फिर एक एज के बाद फिर बॉडी का कई और मैकेनिजम्स के कारण फिर वो ये स्लीप थ्योरी उसमें वैलिड नहीं होती। तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं 7 to 70। हाँ जी, हाँ जी, दोपहर में। अच्छा, वो भी हमने कवर नहीं किया। एक बोलते पावर नैप बोलते हैं, मैं वैसे ब्रॉडली बोलता हूँ। ऐसे कहते हैं कि आप जो भी सोते हो, समझो मैं 10 बजे सोता हूँ और 5 बजे उठता हूँ, तो उसका सेंटर क्या है? सेंटर क्या होगा 10 से 5 के बीच का? 7 घंटा हो तो 3.5 घंटा, तो करीब 1.5 बजे है ना। तो जो सेंटर है वहां से 12 घंटा ऐड करो, तो दोपहर को 1.5 बजे कुछ होगा। वहां 20-25 मिनट अगर आप पावर नैप लेते हो तो काफी है। पावर नैप का भी छोटा सा सब्जेक्ट था, वो अलग है। पावर नैप में क्या, आप सीधा ही जैसे कि एक डीप स्लीप में जाते होता ना, कई बार आप दोपहर को थोड़ी देर के लिए 15 मिनट भी ऐसे रेस्ट करते हो और एकदम एनर्जेटिक होता। तो अगर वो मौका मिले तो आप वो भी कर सकते हो, है ना। तो उसको हम पावर नैप में बोलते हैं। आजकल कई बार होता है, कई जॉब ऐसे होते हैं रात को जागना और दिन को सोना, वो प्रकृति के मतलब प्रकृति के खिलाफ है। एक नेचुरल बॉडी का भी बायोलॉजी का भी होता है। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं हमारे जो लाइट के साथ वो जनरेट होते हैं, डार्कनेस के साथ जनरेट होते हैं, वो नींद को ट्रिगर करते हैं, तो वो सब डिस्टर्ब होता है। और अनफॉर्चुनेटली आजकल बहुत सारी ऐसे जॉब्स है जिसमें ये होता है, इसलिए मैंने कहा आज स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर सबसे ज्यादा। वो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन वो इनडायरेक्टली बहुत तरीके से उसका इम्पैक्ट होता है ना, पर वो करेक्ट तरीका नहीं। हाँ जी, देखो म्यूजिक आपको जरूर हेल्प करता है, जैसे कई बार सोने के लिए भी कई और भी तरीके बोलते हैं, लाइट म्यूजिक हो हेल्प करता है, डेफिनेटली म्यूजिक हेल्प करता है, लेकिन वो भी एक इनडायरेक्ट और बहुत इनएफेक्टिव तरीका। अगर कोई मेडिटेशन सीखता तो डायरेक्ट और पावरफुल तरीका, ठीक है। चलिए, तो हम अभी इसको समाप्त करते हैं, क्योंकि हो सकता है स्लीप रिलेटेड और भी क्वेश्चन हो तो आप, मैं इधर ही हूँ, कभी भी आप मेरे से कभी भी मिल सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो अभी नहीं करें क्योंकि इसके बाद आपका ब्रेक है और फिर एक अगला सेशन है, बाकी मैं इधर ही हूँ, आप कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।